ओम शांति। आज हमारे सबके सामने उपस्थित है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी योगिनी बहन जी। मैं ब्रह्मा कुमारी बहन जी को इनवाइट करती हूँ कि योगिनी बहन जी का फूलों से स्वागत करें। हम सभी करतल ध्वनि से योगिनी बहन जी का स्वागत करेंगे। आप मुंबई यूनिवर्सिटी के फिलोसॉफी विषय में आर्ट्स ग्रेजुएट हो, आपको बाल्यकाल से ही आध्यात्मिकता की ओर रुचि रही है, आप 40 वर्षों से भी अधिक समय से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो, वर्तमान समय आप विलेपार्ला मुंबई के ब्रह्मा कुमारी सेंटर के डायरेक्टर हो, माउंट आबू के बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हो, आप वाटुमल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू के ट्रस्टी हैं, मुंबई एयरपोर्ट रोटरी क्लब के आप रोटेरियन हैं, ब्रह्मा कुमारी के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित BSCSMG हॉस्पिटल के आप ऑनररी एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर और एडवाइजरी कमिटी के मेंबर हो, हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आप मुख्य प्रवक्ताओं में से एक हो, आपके नेतृत्व के तहत बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की तरफ से पहली बार भारत में हैदराबाद नागार्जुना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने ब्रह्मा कुमारीज के एक केंद्र की स्पॉन्सरशिप ली और वहां से आरंभ हुए सारे भारत के उद्योग और व्यापार के मैनेजमेंट के कार्यक्रम, उसमें एक रूपरेखा थी कार यात्रा की। ऐसी 7 कार यात्राएं भारत में विभिन्न स्थानों पर की, जिसमें आपने हजारों व्यापार और उद्योगों को लाभ दिया। 1985 में पहली बार भारत में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से भारत के 13 स्थानों से पद यात्रा का आयोजन हुआ और आपने मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा की थी। आपका सफलतापूर्वक इसी में आयोजन रहा, परिणाम स्वरूप भारत में 90 सेवा केंद्र शुरू हुए और कईयों ने बुरी आदतों का त्याग भी किया। आपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए फिल्म जगत के प्रसिद्ध गायकों द्वारा और गीतकारों द्वारा सुंदर गीत भी बनवाए, जो मेडिटेशन के लिए लाभदायक रहे हैं। जिस सेवा केंद्र के आप डायरेक्टर हैं मुंबई विलेपार्ला जुहू में, कई फिल्म पर्सनालिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। ईश्वरीय सेवा में उनका सहयोग लेने में आपने सफल प्रेरणाएं दी है। आपको नई नई रचनात्मक कार्यों की रुचि रही है। हमारे कई भाई बहने और मेहमान भारत के अलावा कई देशों से माउंट आबू के लिए आते हैं, तो मुंबई में उनका ट्रांजिट होने के कारण आप ही वो सारे प्रबंध सफलतापूर्वक करती हैं। आपने सारा विश्व भ्रमण इन सेवाओं के हेतु किया है, तो आज हम ब्रह्मा कुमारी योगिनी बहन जी से सुनेंगे विजडम फॉर चेंजिंग टाइम थ्रू राजयोगा के विषय में। संक्षिप्त में कहूं तो व्यक्तित्व में महानता झलकती, गुणों में गहराई, उदारता की रमणीक मूरत, कर्तव्य में सेवा समाई, संतुष्ट करते चलती सबको, है शुभ संकल्पों की धनी। स्वागत करते हैं दिल से आपका।
स्ट्रेस में आ गया। आज स्ट्रेस क्यों होता है, कारण क्या है? आज आपके बिजनेस और इंडस्ट्री में इतनी कंपटीशन, जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। हमारी ये बहनें जो अभी सब छोटी छोटी आती है, वो सब कंपनीज में प्रोग्राम करने जाती है, तो एक ये एग्जाम्पल जरूर सुनाते हैं कि कंपटीशन कैसे बढ़ गई है। एक बार अफ्रीका वो नहीं चाहिए। और पांचवा कारण मेन जो स्ट्रेस का है, वो है बॉडी कॉन्शियसनेस, जिसको हम कहते हैं कि देह का भान। आज देखिए आप, हम कहते हैं क्रोध, हम कहते हैं ना कि हमने 9 बार तो कंट्रोल किया, पर 10वीं बार तो हमें गुस्सा आ ही गया। क्रोध अग्नि है, खुद भी जलता है दूसरों को भी जलाता है। लोभ है, खुद संग्राहखोरी, खुद भी हैरान दूसरा भी हैरान। और सबसे बड़ा जो है वो है ईगो। आज ईगो प्रॉब्लम बहुत हो गया है, इसमें भी इसके कारण भी लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि एक बार दो बिजनेसमैन गाड़ी चला रहे थे, दो व्यक्ति तो आमने सामने आ गई। हमारे वहां कई बार मुंबई में छोटे रास्ते पर ऐसी आ जाती है। अभी एक ने बोला तू रिवर्स ले, तो उसने बोला मैं नहीं लूंगा, तू गाड़ी को रिवर्स ले, क्योंकि वो पुलिया छोटा था और दोनों आमने सामने। दोनों एक दो को बोले, खड़े रह गए, कोई भी रिवर्स गाड़ी लेने को तैयार नहीं। इतने में एक व्यक्ति जो बैठा था वो उतरा गाड़ी से चलाने वाले, और वो छोटा पुलिया था उस पर बैठ गया और फिर आराम से पेपर निकाला और पेपर पढ़ने लगा। दूसरा गाड़ी में ही बैठा रहा। फिर थोड़ी देर हुई, वो भी गाड़ी से उतरा, तो इसने सोचा कि अभी ये समझौता करने मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं तो उसको बोलने ही वाला हूं कि तू तेरी गाड़ी पहले पीछे हटाना। तो वो भाई आया उसके पास, तो उसको क्या बोलता है कि तू ये पेपर पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद मेरे को पढ़ने देना। तो ये क्या हुआ, ये ईगो प्रॉब्लम इसको कहा जाता है। मैं आपको बताऊं कि मैं थोड़े सालों के पहले रशिया में गई थी। हमारी जो बिजनेस इंडस्ट्री विंग की चेयरपर्सन दादी हृदय मोहिनी जी, उसके साथ जाना हुआ, तो वहां हमने देखा कि 100% एजुकेशन था। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, सब कुछ फ्री, रेंट फ्री, टेलीफोन फ्री, मतलब बच्चों का सब कुछ फ्री, परंतु फिर भी सबके चेहरे पर वो जो खुशी चाहिए वो नहीं थी। तुमने एक को पूछा कि ऐसा क्यों है, चेहरे पे क्यों है खुशी क्यों नहीं, देखने में सुंदर सब कुछ अच्छा। तो बहुत अच्छा उसने हमको जवाब दिया कि बहन, हमारे देश से आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी चली गई, सबसे पहले हमारी हेल्थ चली गई। कम्युनिस्ट था और कोई भी नाम नहीं ले सकते थे, तो बोला हमारी इसलिए हेल्थ बिगड़ गई, हम डिप्रेशन में आ गए। उसके बाद हमारी वेल्थ, हमने खुद ने देखा वहां, एक ब्रेड के लिए 500 लोगों की लाइन थी वहां। तो हमारी हेल्थ भी गई, वेल्थ भी गई। जहां हेल्थ नहीं हो, जहां वेल्थ नहीं हो, वहां हैप्पीनेस, खुशी हो सकती है। ऐसा ही हमने अमेरिका में भी गई तो देखा। हम एक सैन फ्रांसिस्को जो शहर है वहां गई, तो वो भाई हमको घुमाने लेके गया, दिखाने लेके गया शहर। तो मैंने कहा इधर तो बहुत अच्छा है, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा ये, ऐसा करके मैं महिमा करने लगी। मैंने जब बोलना बंद किया तो वो भाई ने मेरे को एकदम फोर्स में बोल दिया, अरे अरे परंतु यहाँ स्ट्रेस बहुत है, ऐसा बोला। मैं सोचने लगी ये क्यों ऐसा बोलता है, सब कुछ है फिर भी कहता है कि मैं स्ट्रेस में हूं, कारण क्या। बहुत सोचने के बाद मेरे को एक रियलाइज हुआ कि इन लोगों के पास मटीरियलिस्टिक सब कुछ है, परंतु आध्यात्मिक रीति से ये खोखले हो गए हैं, जो जीवन में आवश्यक है। वहां एक स्कूल में हमारी बहनियां आई है, एक रीना बहन, वो प्रोग्राम करने गई, तो स्कूल के बच्चे हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को हम चॉकलेट देंगे, पेपर देंगे, लेकिन वहां स्कूल के बच्चे नींद की गोलियां खाते थे। तो देखो ये क्या हो गया, सब कुछ मटेरियलिस्टिक है पर बैलेंस आध्यात्मिकता का साथ में जरूरी है। आज कितना भी हमारे पास आप देखो धन है, अच्छी बात है, परंतु धन हमें पुस्तक खरीद के दे सकता है पर दिमाग तो नहीं दे सकता है ना। धन मकान खरीद के आपको दे सकता है पर घर नहीं। धन दवाई आपको खरीद के दे सकता है परंतु स्वास्थ्य नहीं दे सकता है। धन अन्न खरीद के दे सकता है परंतु पाचन शक्ति जो है वो नहीं वो दे सकता है। धन बिस्तर खरीद के दे सकता है, चाहे डनलॉप का ले लो, परंतु नींद जो है वो नहीं दे सकता है। तो आज हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस कैसे करना चाहिए। आप बिजनेसमैन हो, आपको बिजनेस करना है और ये भी जरूरी है कि धन को कमाना भी है, परंतु धन और लाभ तीन प्रकार का है। प्रॉफिट करना है हमको, ऐसे नहीं हम प्रॉफिट करने के लिए तो बिजनेस करते हैं, पर इसके तीन प्रकार है। पहला जो प्रकार है वो ये है कि आप किसी के साथ जब बिजनेस करते हो तो उनको भी फायदा होना चाहिए, उनको लाभ भी होना चाहिए, साथ में आपको भी लाभ हो जाए। ऐसा जो धन है वो दूध के समान है, दोनों खुश है। दूसरा जो प्रकार है वो ये है कि बिजनेस करते करते लेन देन में बिजनेस की रीति नीति तो ठीक है पर लेन देन करते समय थोड़ा व्यवहार का जो स्तर है वो कम हो जाता है, मूल्यों की कमी हो जाती है। तो ऐसा जो धन है वो पानी मिश्रित दूध के बराबर है। तो आपको जीवन में सुख और शांति भी जो है वो इतने ही परसेंटेज में मिलेगी। और तीसरा जो प्रकार है वो ये है कि सामने वाले व्यक्ति को लगता है अरे इसने तो मेरे को धोखा दे दिया है, मेरे से विश्वासघात इस व्यक्ति ने किया है। तो ये जो धन है वो सात्विक नहीं है। तो हमें क्या करना है, कैसे हमको करना है। आप देखो आगे कि 12 मूल्य है, यदि हम जीवन में इस मूल्यों को अपनाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारी जो लाइफ है वो बैलेंसिंग हो जाएगी। आप जब बिजनेस करते हो या इंडस्ट्री चलाते हो तो तीन पावर की आवश्यकता रहती है। कौन से वो तीन पावर है? एक तो आपको इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, चाहिए ना। तो इलेक्ट्रिक पावर नहीं होगा तो आप कैसे अपनी इंडस्ट्री चलाएंगे, नहीं चला सकते हो, जरूरी है वो। अच्छा, मशीनरी होती है उनको चलानी होती है। दूसरा मनी पावर चाहिए, नहीं तो आप अपने कर्मचारियों को कैसे पगार देंगे, कैसे आगे करेंगे। तो मनी पावर भी चाहिए। और तीसरा पावर कौन सा है, मेन पावर। इतने अच्छे मैनेजर चाहिए, कर्मचारियां चाहिए, आपका जो मशीनरी चला सके अच्छी तरह से, आपको फायदा करा देवे, तो मेन पावर भी चाहिए। अभी ये तीन पावर हो गई, इलेक्ट्रिक पावर, मनी पावर, मेन पावर। इन तीन पावर के अलावा एक चौथा भी पावर है। वो कौन सा पावर है? वो है स्पिरिचुअल पावर। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये स्पिरिचुअल पावर जिसको हम कहते हैं उनकी आवश्यकता है। एक बार दिल्ली में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारी जो चेयरमैन दादी गुलजार है हृदय मोहिनी जी, उनके पास गए और उन्होंने कहा, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, उन्होंने कहा कि दादी आप हमारी इंडस्ट्रीज में हमारे सारे स्टाफ के लिए प्रोग्राम करो। उन्होंने 7 डेज कोर्स किया, उनको बहुत अच्छा लगा, तो कहा आप सबके लिए करो। तो सबके लिए किया गया, उसके बाद पूरा हुआ 7 दिन का कोर्स, तो सारे जो स्टाफ था सारा वो दादी जी को मिलने के लिए सेंटर पर आए और दादी ने उनको कहा कि आपने क्या क्या पूछा, परिवर्तन किया, उन्होंने सब सुनाया। फिर दादी ने कहा ऐसे करो, आप लोग रोज ये योग का, राजयोग का अभ्यास करो। तो वो कहने लगे, हाँ दादी हम लोग तो करेंगे, हमारा जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन आप है ना दादी, हमारा जो बॉस है ना, वो बॉस को भी बोलो वो भी आए। तो दादी ने कहा मैं तो आप लोगों को बोलती हूँ ना, आप आपके बॉस के लिए क्यों कह रहे हैं? तो कहने लगे दादी ऐसा है कि जब पहले यहाँ आने से पहले वो राउंड लगाने आता था तो हमको ऐसे लगता था कि जैसा कोई काल आ गया है, लेकिन अभी जब भी वो राउंड लगाने आता है तो हमको लगता है हमारा बाप आ गया है, इतना इसमें चेंज है। तो हम कई इंडस्ट्रीज में ये प्रोग्राम जो है हमारी बहनें, ये आध्यात्मिकता का वहां जाके क्लासेस लेती है। चाहे मैं आपको बताऊं, जैसे बताया कि नागार्जुना, हमने सबसे पहले आज से 25 साल पहले वहां हैदराबाद में नागार्जुना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में ये प्रोग्राम शुरू किया। हम ऐसे ही प्रोग्राम करने, कॉन्फ्रेंस जैसे यहाँ है करने गए थे, फिर उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने हमें कहा कि आप ऐसे करो कि यहाँ हमारे सारे स्टाफ के लिए शुरू करो। तो हमने कहा हम तो स्पिरिचुअल है लोग हैं, हम क्या करेंगे? तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा बताया, प्रोग्राम में हमारे बाजू में ही बैठे थे, तो कहा बहन जी आपको मालूम नहीं है, आज मैनेजमेंट के अंदर मेडिटेशन की बहुत ही आवश्यकता है। और सचमुच हमने प्रोग्राम शुरू किया और बहुत सक्सेसफुल गया। उसके बाद हमने आज पूरे इंडिया में, मैं गिनती नहीं कर सकती हूँ पर अनगिनत कितनी हजारों इंडस्ट्रीज में हम कई हमारे प्रोग्राम सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप, सेल्फ ओरिएंटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कितने प्रोग्राम रेगुलर हमारा अभी अमूल डेयरी में, हमारा मुंबई के बाजू में टेप्स बोलते हैं, तारापुर एटॉमिक एनर्जी स्टेशन, रेगुलर वहां सेंटर है और वहां प्रोग्राम हमारा कंटिन्यूअस ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज में चालू रहता है। तो जैसे मैंने बताया कि जीवन में जब हम अपने मूल्यों को धारण करते हैं तो ऑटोमेटिक जीवन में हमें सफलता मिल ही जाती है। हम आज उस 12 मूल्यों को देखेंगे जिसमें पहला मूल्य है कोऑपरेशन, जिसको हम कहते हैं सहयोग। जैसे कल हमने बताया कि उद्योग के अंदर भी योग शब्द समाया हुआ है, योग बिगर उद्योग अधूरा है, वैसे सहयोग में भी आप देखो योग शब्द जो है वो समाया हुआ है। तो कोई भी कार्य जब हम टीम स्पिरिट से करेंगे तो वो कार्य सफल होगा, आपका अच्छा ही होगा। एक बार ये 5 अंगुली है तो 5 अंगुली में से सब ने आपस में लड़ाई कर दिया। क्या लड़ाई किया? सबने बोला मैं बड़ी, इसने बोला मैं बड़ी, इसने सबने बोला, इसने बोला मैं बड़ी हूं क्योंकि सबका मालिक एक, ऐसे किया जाता है। इसने बोला कि मैं तो हूं ही बड़ी, तो मैं बड़ी हो गई ना। इसने कहा कोई भी अच्छा कार्य जो होता है ना वो यही अंगुली से स्वस्तिक करते, शुभ कार्य इसी से करते हैं, इसलिए मैं बड़ी हूं। इसने कहा श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पहाड़ उठाया तो ये अंगुली से उठाया, इसीलिए मैं बड़ी हूं, छोटी अंगुली। और इसने कहा मैं बड़ा क्योंकि कोई भी सही सिक्का एग्रीमेंट करना है तो मेरे बिगर तो होगा ही नहीं, इसलिए मैं बड़ा। अभी क्या करें? तो एक बड़ा थाल लाया, उसके अंदर बूंदी रखी गई। बोला जो अपने को बड़ा समझता है तो वो बूंदी के लड्डू बना के देवे। किसी से नहीं बना, पर जब पांचों अंगुली ने ऐसे किया तब वो लड्डू बना। तो सबके सहयोग से ही सुखमय संसार होता है। तो टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एक दो को देना बहुत जरूरी है। ये बहुत एक बड़ी वैल्यूज है। दूसरी है फ्रीडम। देखो हमने परसों ही 26 जनवरी स्वतंत्रता दिन मनाया, तो हम स्वतंत्र तो हो गए, परंतु सच्ची स्वतंत्रता हम किसको कहेंगे? आज हम विकारों के गुलाम हो गए हैं, तो हमें उनसे मुक्ति पाने के लिए हमें जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाना होगा। हम स्वतंत्र है, स्वतंत्र बनना जरूरी है, चाहिए स्वतंत्रता, पर स्वच्छंदता जिसको हम कहते हैं वो नहीं चाहिए। तीसरी जो वैल्यू है वो है हैप्पीनेस। अभी सुबह को हमारे वो भाई ने बहुत हंसाया ना, गिरीश भाई ने हैप्पीनेस पर आज कराया, क्योंकि कहा जाता है कि खुशी जैसा कोई खुराक नहीं है, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हम मुंबई में एक हॉस्पिटल चलाती हूं, जैसे बहन ने बताया, तो हम हॉस्पिटल में राउंड लगाने जाते हैं तो कई बार देखते हैं ये पेशेंट बेचारा जिंदा तो है पर कोमा में पड़ा हुआ है, ऐसा कहते हैं। तो खुशी बिगर का जीवन कोमा में पड़ा हुआ मनुष्य जैसा है, इसीलिए हमारी खुशी जीवन से कभी भी गायब नहीं होनी चाहिए। जो जीवन में प्रसन्नता जो है वो बहुत जरूरी है। एक अमेरिका में डॉक्टर सोंजा हो गए, उसने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया तो 75,000 लोगों का उसने सर्वे किया, तो उसने सर्वे में देखा कि जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त था वो अपने जीवन में ज्यादा सफलता को पाया था उन्होंने। तो जीवन में प्रसन्नता, प्रसन्न चेहरा सबको अच्छा लगता है ना। सुबह उठ उठ के किसी का चेहरा ऐसा होगा तो हम लोग करेंगे, अरे इसका चेहरा देखा हमारा दिन खराब कर दिया इसने, ऐसे बोलते हैं। खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, प्रसन्न चित्त हमारा चेहरा चाहिए। तो हैप्पीनेस भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। उसके साथ साथ ऑनेस्टी, प्रामाणिकता। मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल के, जैसे अभी ये कॉन्फ्रेंस हमारी आज हो रही है, ऐसी हमारी बहुत सालों पहले भी हुई, तो उसमें वो दिल्ली में उस समय वो चीफ जस्टिस थे कृष्णा अय्यर जी, तो वो यहां आए थे। इसने दो इतने अच्छे, वो खुद बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति, तो उसने दो इतने अच्छे एग्जाम्पल सुनाए, मुझे याद रह गया, मैं आपके साथ शेयर करती हूं ऑनेस्टी के लिए। एक उन्होंने कहा कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दो ये बिजनेस मैनेजमेंट का पढ़ाई के लिए दो बच्चे जा रहे थे, तो उनका एग्जाम था बिजनेस स्कूल में, तो थोड़ी केयरलेस के कारण उन बच्चों को लेट हो गया। तो जब वो वहां पहुंचे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पास, तो प्रोफेसर ने पूछा कि आप लोग क्यों लेट आए? तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, लेट आए तो आप दोनों को अलग अलग रूम में बैठो जाओ जाके, तो अलग अलग क्लासरूम में बिठाया। फिर एक को पूछा, अच्छा तेरे को लेट हो गया तो तेरी, उन बच्चों ने कहा होगा कि हमारा गाड़ी का पंक्चर हो गया ना, इसलिए हम लेट आए हैं। तो इन्होंने पूछा कि तेरी कौन सी गाड़ी का, कौन सी साइड का पंक्चर हुआ? तो वो बच्चे ने बोला, स्टूडेंट ने बोला, राइट साइड का हुआ। फिर दूसरे क्लास में जो बैठा था उनको पूछा, तू बता कौन सी साइड का गाड़ी का जो है वो साइड में पंक्चर हुआ? उसने बोला लेफ्ट साइड। तो वो समझ गया, उसने कहा तुमको तो इतना बड़ा बिजनेसमैन आगे जाके बनना है और अभी से आप झूठ बोल रहे हो, तो सॉरी कहा फिर वो लोगों ने। तो ऑनेस्टी आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा एग्जाम्पल भी उसने बहुत अच्छा दिया था कि एक बार इलेक्शन हो रही थी, इलेक्शन हो रही थी तो एक पार्टी ने एक व्यक्ति को 500 रुपया दिया कि तू मेरे को ही वोटिंग करना, अभी तो है ही नहीं, मैं उस जमाने की बात करती हूं, तो 500 रुपया दिया मेरे को ही वोटिंग करना। दूसरा उसी व्यक्ति को दूसरी पार्टी वाला आया और उसने उसको 1000 रुपया दिया और बोला तू मेरे को ही वोटिंग करना। तो एक ने पूछा कि अरे तेरे को एक ने पार्टी वाले ने 500 दिया, एक ने 1000 दिया, आखिर तूने वोट किसको दिया? तो उसने बोला मैंने तो 500 रुपए वाले को वोट दिया। बोला क्यों, 1000 रुपया ज्यादा दिया था? बोला नहीं, 500 रुपया दिया वो थोड़ा कम करप्टेड हुआ ना, ऑनेस्टी तो नहीं है, पर फिर भी उसने सोच के ऐसा जवाब दिया। तो जीवन में बहुत जरूरी है ऑनेस्टी, वैल्यू है। उसी तरह से हम कहते हैं ह्यूमिलिटी, नम्रता। व्यक्ति के अंदर जितनी महानता होती है ऑटोमेटिक उसके अंदर नम्रता जो है वो आ जाती है। हमारे जो मैंने कहा प्रकाशमणि दादी जी थे, वो शिकागो में गए थे, वहां वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन कॉन्फ्रेंस थी, विवेकानंद जी को 100 साल पूरे हुए थे उसके निमित्त थी। तो लेडीज में दादी एक ही थी, बाकी बहुत स्पीकर गए हुए थे, तो जर्नलिस्ट लोग बहुत थे। तो दादी को पूछा कि दादी आपके ये आजू बाजू में और भी इतनी बहनें जो हमारी अमेरिका में थी वो सब दादी के साथ थी वहां, तो बोला ये सब कौन है, आपके फॉलोअर्स कितने हैं दादी? तो दादी ने कहा मेरे तो कोई फॉलोअर्स नहीं है। तो बोला ये इतनी बहनें जो सब दिखाई पड़ती है वो सब कौन है? तो बोला ये सब मेरे लीडर है। तो दादी ने सबको अपने समान तैयार किया। आज हमारे 4000 से ऊपर जहां भी जितने भी सेंटर है, दादी ने एक एक बहन को तैयार किया है जो ये सेंटर संभालती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। उसके बाद है लव, प्रेम, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर पिताश्री ब्रह्मा बाबा जिसको हम कहते हैं, उन्होंने जो कार्य किया स्थापना का, उसमें सबको प्रेम से परिवर्तन किया। प्रेम ऐसी चीज है कि आप उनको कहते हैं ना, पत्थर भी पानी हो जाता है। तो कभी किसी को, आज हम इतने सालों से यहां चल रहे हैं, हमारी दादियों ने, अभी हमारी 101 साल की दादी जानकी हुई, इतना प्रेम से ही हमको सिखाती है, खुद इतनी अलर्ट है, एक्यूरेट है, हमको भी कहती है जीवन में सदा अलर्ट बनो, एक्टिव बनो, एक्यूरेट बनो। तो ये बहुत जरूरी है। देखो एक दो कंपनी में एक बड़ी ऑफिसर, दोनों कंपनी में बड़ी बड़ी ऑफिसर थी, एक जो कंपनी की बड़ी ऑफिसर थी उसके कर्मचारी कभी छुट्टी चाहिए, अचानक चाहिए किसी को कोई भी कारण से, तो लेने आते थे, वो अपना मुंह बिगाड़ देती थी। तो बाद में लोग बोलेंगे ये तो बहुत अभिमानी है, ये तो बहुत खड़ूस है, ऐसा करके बोलते थे, खुश नहीं होते थे। दूसरी जो कंपनी की ऑफिसर थी, उनके पास एक बहन ने कहा मेरा बच्चा बीमार है और मेरे को छुट्टी जल्दी चाहिए, आप मेरे को देंगे? तो वो कहती थी हाँ ठीक है, बच्चा बीमार है तू जा। फिर वापस वो छुट्टी लेके 2-4 दिन की आती थी तो उसको पूछती थी तेरा बच्चा ठीक हो गया है, तेरे को और भी ज्यादा छुट्टी चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। तो वो उससे क्या होता था, वो बात और भी सारे जो स्टाफ सुनता था, तो वो बहन का देखो प्रेम से किया ना उसने काम, तो वो जो बोलती थी वो सब काम वो लोग खुशी खुशी से तुरंत उनको प्यार से कर देते थे। तो जितना हम प्रेम से करेंगे परिवर्तन व्यक्ति हो जाता है। ब्रह्मा बाबा ने भी कन्याओं माताओं को निमित्त इसलिए बनाया कि माताएं अपने बच्चों को संस्कार देती है, प्यार से समझाती है, उनको परिवर्तन करती है। तो यहाँ भी जो इतने सारे भाई बहनों को समझाना होता है किसी को कोई बुरी आदत, तो बहनें उनको प्यार से समझाती है कि इससे क्या नुकसान है, क्या है, तो प्रेम से परिवर्तन कराते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है, लव प्रेम एक वैल्यू, उसके साथ पीस वो भी बड़ी वैल्यूज है, शांति। आज जीवन में हम कहेंगे शांति तो सब गुणों की जननी है, हम बोलते हैं पहले बोलने में ओम शांति, माना उसका अर्थ क्या है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, वो अपने को हम याद दिलाते हैं कि शांति मेरा स्वधर्म है, वो हम याद करते हैं। आज आपको गुस्सा आ जाएगा, चलो 24 घंटा आप कर सकेंगे गुस्सा, कर सकते हैं 24 घंटा, नहीं कर सकते, बहुत जोर जोर से चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे तो आधा घंटा घंटा, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते है ना, क्यों, पानी को आप कितना भी गर्म करो परंतु पानी का ओरिजिनल नेचर क्या है, शीतलता है, ठंडा ही हो जाएगा वो, तो ओरिजिनल आत्मा का जो स्वभाव है वो भी शांति का है, तो हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप है उसको याद रखना है। तो जीवन में ये भी वैल्यूज हमें अपने अंदर धारण करनी है, लव पीस, और उसके बाद है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट भी हम कहते हैं कि यहां हमको सिखाया जाता है हमारी दादियों से, और ब्रह्मा बाबा भी हमेशा कहते थे कि बड़ों को रिगार्ड दो हमेशा और छोटों को प्यार से चलाओ, ये रिस्पेक्ट है। समय कम है, मैं फास्ट करती हूं। उसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज जवाबदारी जिसको हम कहते हैं, कर्तव्य और अधिकार दोनों का बैलेंस चाहिए। उसी तरह से सिंप्लिसिटी, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, हम कहते हैं ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कहने में कहते हैं ना, तो जितना हम हमारे अंदर सिंप्लिसिटी होगी उतना देखो आपको सफलता कैसे मिलती है। उसी तरह से टॉलरेंस, सहन करने की शक्ति, ये भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। आज कोई भी आप कार्य करते हो, आप इतने बड़ी इंडस्ट्री चलाते होंगे, बिजनेस करते होंगे, तो ऐसे तो आप बड़े नहीं हो गए ना, बड़े बिजनेसमैन ऐसे तो नहीं हो गए ना, उनके पहले आप लोगों ने कितना मेहनत किया होगा, अनुभव सुनाएंगे इसमें से, तो कई लोग अनुभव सुनाएंगे कि हमने पहले इतना सहन किया, फिर ये किया, जो भी करते हैं पहले से, कोई उनके पास सब कुछ नहीं होता है कि वो पैसा है और किया, नहीं कुछ भी नहीं था, हम अपनी मेहनत से जो है वो आगे आए। तो कोई भी कार्य आप करो सहन तो करना ही होता है ना। आज पत्थर देखो, हम झाड़ को पत्थर मारते हैं पर वो हमें क्या देता है, वो तो हमें फ्रूटी देता है ना। आज मूर्ति भी पूजने लायक कब बनती है, एक शिल्पी इसको ठोक 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 कितना करता है तब वो मूर्ति जो है वो पूजने लायक बनती है। आप लोग बैठे हैं ना, एक छोटी सी कहानी फिर भी सुना देती हूं कि एक बार दही वड़ा सबने खाया होगा ना, दही वड़ा पता है ना सबको, बनाते हैं ना, वो वड़ा को पूछा गया, अरे वड़ा तू बड़ा कैसे बना, तो उसने अपनी कहानी शुरू कर दी, मैं तो बहुत अच्छा खेत में लहरा रहा था, बहुत खुश था, लेकिन एक ट्रैक्टर आया और मेरे को काट के उस ट्रैक्टर में डाल दिया, और रास्ता तो कितना खाबड़ खुबड़ वाला था पर मैं चुपचाप सहन करता रहा, मैं किसको बोलूं। अच्छा वहां से मेरे को इन्होंने जाके एक मिल के अंदर दे दिया, और उस मिल के अंदर हमारे दो टुकड़े कर दिए, वो दाल को करते हैं ना, तो टुकड़े कर दिए, मैं तो चुपचाप सहन करता ही रहा। अच्छा फिर एक घरा आया और दुकान में रखा था, वहां से हमको लेके गया, और इतनी ठंडी की रात थी, इतनी ठंडी की रात थी कि मेरे को ऐसे ठंडे पानी में डुबा के रख दिया। मैं सहन करता रहा, फिर भी मेरे पर दया नहीं आई, तो सुबह को मेरे को मिक्सर के अंदर पूरा पीस डाला, तो भी मैं सहन करता रहा। फिर मेरे को आग के अंदर, तेल के अंदर, आग के अंदर डाल दिया, मैं तो चुपचाप सहन करता रहा। उसके बाद भी जब पानी में डाला और दही में डाला, तब वो वड़ा जो है वो बड़ा बना। तो ऐसे तो कोई नहीं बनता है ना। आप सब में से कोई अपना अनुभव ऐसे सुना सकते हो ना, किसी का ऐसा अनुभव है भाई जो हमने मेहनत से इतना सहन करके हम बिजनेसमैन बड़ा बना है? कोई खड़े हो जाओ तो, कि सबको इजी हो गया है, इजी हो गया है ना। आप अपना अनुभव सुनाना, जरूर सुनाना अनुभव। तो ये है, ये सहन शक्ति भी एक वैल्यू है। और लास्ट में मैं कहेगी यूनिटी सबसे बड़ी वैल्यू, एकता, संगठन की शक्ति बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य आप करो तो, एक बार एक क्या बोलते हैं उसको, शिकारी था, वो एक बड़ी जाल में दाना डाल दिया अंदर, तो बहुत पक्षी आके, हम स्कूल में ये पढ़ते थे, तो बहुत अंदर दाना डाला तो बहुत पक्षी अंदर आ गए। अभी पक्षियों ने सोचा ये तो हम फंस गए, तो उसमें से एक पक्षी ने बोला कि सब 12 नाखून का जोर लगाओ। पादी थोड़ा दूर बैठा था वो शिकारी, तो बोला सब 12 नाखून का जोर लगाओ, एक साथ में लगाओ और उठ जाएंगे। तो जाल सहित सबने इतना लगाया जोर, जो सारी जाल के सहित वो लोग उड़ गए। वो देखता ही रहा आश्चर्यचकित होकर के, शिकारी देखता ही रह गया। तो यूनिटी, सबने मिलके काम किया। तो जब हम ये वैल्यूज के ऊपर चलेंगे, तो जैसे मैंने बताया, ऑटोमेटिक जीवन में सफलता हमारे जीवन में मिल ही जाएगी। देखो आज हम चार बातों में सफलता चाहते, चार बातों में। एक तो मैं कहेगी सामाजिक सफलता, सबको चाहिए। दूसरा व्यक्तिगत सफलता। तीसरा पारिवारिक सफलता, अपने परिवार में भी वो सफल रहे। और चौथा व्यवसायिक सफलता, बिजनेस, सक्सेस इन बिजनेस, ये भी चाहिए। जब हम सक्सेस शब्द का अर्थ करते हैं, सक्सेस शब्द का सात अक्षर का बना हुआ है, जिसमें मैं कहती हूं एस फॉर सेटिंग गोल, आप अपने जीवन में गोल को सेट करो, आपको सफलता मिलेगी। आज जिसको एवरेस्ट पहाड़ चढ़ना है, वो माइलस्टोन नहीं देखेगा, वो एवरेस्ट ही देखेगा। उसको गोल वहां है, वहां पहुंच जाना है। धीरूभाई अंबानी थे, वो रंगून में खाली पेट्रोल पंप पर, वो कार में पेट्रोल डालते थे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा, लक्ष्य गोल ये नहीं रखा कि मैं एक पेट्रोल पंप बनाऊंगा। उसने गोल क्या रखा, पेट्रोल रिफाइनरी बनाऊंगा, तो बनाई उसने। तो हमारे को अपना जो गोल है हर एक को सेट करना जरूरी है। यू फॉर यूटिलाइज द टाइम, समय जो है, आज सुबह का समय गया, वो वापस आएगा नहीं आएगा ना। आप 24 घंटे का 25 घंटा नहीं कर सकेंगे, आपको अपना टाइम को मैनेज करना ही होगा, इसलिए टाइम मैनेजमेंट पर कराते हैं। आपको खुद को ये होना चाहिए कि प्रायोरिटी किस काम की है, पहले मुझे कौन सा काम करना है। तो समय, सी माना करेज, हिम्मत, आप एक कदम आगे बढ़ो, वो हजार कदम आपको मदद करेगा, पर आप एक कदम आगे तो बढ़ो, तब होगा ना। एक बार पेपर में मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि एक बार का हिम्मत जरूर चाहिए, कि धीरूभाई अंबानी जा रहे थे तो बहुत तूफान स्टॉर्म कार में आया, और ड्राइवर ने पूछा अभी कार हम चलाना बंद करो, दिखाई नहीं पड़ता है कुछ। तो बोला नहीं नहीं तुम आगे ही चलो, आगे ही चलो। थोड़ा और आगे गया तो और ज्यादा था, अंधेरा हो गया बहुत। कई कार रस्ते में खड़ी थी तो पूछा मैं करूं, बोला नहीं अभी भी नहीं, तुम आगे बढ़ता चल, चलता चल तुम। जब थोड़ा आधा घंटा और आगे गए तो वहां फिर अंधेरा नहीं था और तूफान चला गया था वो एरिया में। तो कहा उसने, फिर ड्राइवर ने पूछा ये तो बहुत अच्छा किया, जो कार खड़ी थी वो वहां रह गई, तूफान में फंसी हुई रही और वो आगे निकल गए। तो ये हिम्मत, कोई भी कार्य हमें करना है तो हमें कहते हैं ना हिम्मत है मर्दा तो मदद खुदा, तो जरूरी है ये भी। सी माना क्रिएटिविटी, SUCC, तो क्रिएटिविटी रचनात्मक कार्य आप करो, कोई भी कार्य करो। तो मैं मुंबई में एक सर्कल है वहां रतन टाटा जो थे उद्योगपति, वो अपनी गाड़ी में जा रहा था तो देखो कैसे उसने रचनात्मक क्रिएटिविटी कार्य किया कि उसने देखा कि बहुत बारिश आ रही है और आगे स्कूटर में हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे सारे बेचारे भीग रहे हैं। उसने सोचा अभी ये कुछ करना चाहिए इन लोगों के लिए, तो एक सस्ती कार जो है ना मैं उनके लिए बनाऊं। और उसने, सबको पता है ये कि उसने नई नो कार बनाई। ये है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी हर एक को अपना रचनात्मक कार्य जिसको हम कहते हैं वो करना ही चाहिए। ई माना एफोर्ट, पुरुषार्थ, प्रारब्ध पर बैठना नहीं है, पुरुषार्थ हर एक को करना है। और यहां सबको ये अनुभव होगा बिजनेसमैन को कि हम कैसे पुरुषार्थ करते हैं तभी हम आगे आए हैं। पुरुषार्थ जरूरी है। फिर एस फॉर सेंसिबल प्लानिंग, आप प्लानिंग जो करो वो बहुत सोच के सबको लो साथ। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई योग्यता है, कोई न कोई गुण है, कोई न कोई विशेषता है। यदि किसी के अंदर 99 अवगुण होंगे ना तो भी एक विशेषता होगी। आप उसकी विशेषता को लेके कार्य करो, आपका सक्सेस होगा, जरूर होगा। हर एक की विशेषता को देखो। तो सेंसिबल प्लानिंग करना है और जब वो हो जाए तो अगेन एस माना स्टार्ट द वर्क, फिर आप अपना जो कार्य है वो चालू करो। आपको सफलता हुई पड़ी है, कहते हैं ना कि दृढ़ता सफलता की चाबी है, डिटर्मिनेशन इज द की ऑफ सक्सेस, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं आज आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सफल बिजनेसमैन रहे, हमें बहुत खुशी है। और ये बात, एक बात खाली जरूर ध्यान हमें रखनी है कि हम कितने भी बिजी हो लाइफ में आप, लेकिन बिजी होते हुए भी क्या रहना है, इजी रहना है। और इसके लिए मैं बताऊं, एक हमारे डॉक्टर ने अपना अनुभव सुनाया था कि एक यंग बिजनेसमैन था, अपनी BMW कार में वो हाईवे पर फास्ट गाड़ी चला के जा रहा था तो एक बच्चे ने जोर से पत्थर मारा उस गाड़ी को। उसने गाड़ी साइड पर रोका और उतरा और बच्चे को बोला, थोड़ा गुस्सा आया, अरे तूने मेरी ये गाड़ी को पत्थर मार दिया, डैमेज कर दिया तूने। तो वो बच्चा रोने लगा और कहने लगा, सॉरी पर मैं क्या करूं, मेरा भाई डिसाइपल है, अपंग है, वो देखो वो वहां व्हीलचेयर से गिर गया है और मैं अकेला उसको नहीं उठा सकता हूं, तो आप जरा मेरी मदद करें, मैं कब से चिल्ला रहा हूं, कब से मैं कर रहा हूं, कोई मेरा सुन ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने फिर पत्थर मारा आपका ध्यान खिंचवाने के लिए। तो फिर वो भाई ने वो बच्चे को व्हीलचेयर पर बिठाया, उसके पास अपना रुमाल था वो घा पर बांधा और फिर वो बोला, तो बच्चे ने बोला थैंक्स, गॉड ब्लेस यू, ऐसा करके वो उसको बोल दिया और वो गाड़ी में बैठा, वो अपने भाई को व्हीलचेयर पर बिठा के जाने लगा। वो बिजनेसमैन देखता ही रहा, उसको देखता ही रहा जाते जाते। और उसने क्या किया, कभी अपनी वो गाड़ी को रिपेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया कि नहीं, जब हम इतने अपनी लाइफ में ऐसे बिजी नहीं हो जाए, हमको सहानुभूति किसी को देनी है, हमें ये सेवा करनी है, तो कितना भी बिजी हो आप लेकिन अपने आप को सदा, मैं कहेगी इजी रखो। क्यों, कहा जाता है कि देखो सर्व सोसाइटी थ्रू इंडस्ट्री और सर्व इंडस्ट्री थ्रू स्पिरिचुअलिटी, मैं कहेगी। इसलिए हमारे जीवन में आध्यात्मिकता जो है आज का विषय रखा है कि आध्यात्मिकता के द्वारा बदलते हुए समय में उसकी क्या आवश्यकता है। आध्यात्मिकता से आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकेंगे। आज बैलेंसिंग की जरूरत है, आप अपनी लाइफ को एडजस्ट कर सकेंगे। तो मैं इतना कह के पूरा करती हूं क्योंकि कुर्सी आ गई है। हम सब मिलके अभी मेडिटेशन करेंगे, हमारा ये मेडिटेशन का टाइम है। आप सब भी उसकी योग की अनुभूति जो है वो जरूर यहां आए हैं तो करेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाए सभी और फिर हम लोग बैठेंगे। मेडिटेशन के लिए सभी सीधा बैठे, अलर्ट होकर बैठे और अपने शरीर को भी डायरेक्शन दे कि वो आपको मेडिटेशन में मदद करे और स्थिर रहे। थोड़े क्षणों के लिए हम अपने ही भीतर उस स्थान तक जाएंगे जहां सच्चे सुख और शांति की चाबी है। जहां गहरी शांति है, जहां हमारे सर्व खजाने हैं, गुणों के खजाने, शक्तियों के खजाने, ज्ञान के खजाने, और इस स्थान तक पहुंचने के लिए न इस शरीर की आवश्यकता है और न इंद्रियों की। अब जब इनका काम ही नहीं है तो हमें इन सब से अपना ध्यान हटाकर एक कदम अपने शरीर के अंदर लेना है और साक्षी होकर इस शरीर रूपी मशीन का सारा कारोबार देखना है। सारे कारोबार में सबसे सूक्ष्म कारोबार है श्वास का आना और जाना। जो आंखों से नहीं दिखाई देता है पर चल रहा है उसे फील करो।
इसी श्वास की तरंगों के साथ अपना ध्यान शरीर के ऊपर की ओर ले चलो। जहां अपना मस्तिष्क है, और मस्तिष्क के आगे मस्तिष्क के आगे, दो आंखों के पीछे, ये वही स्थान है जहां हमारे सर्व खजाने समाये हुए हैं। और ये सदा है, यहां पर हम अपने सच्चे वास्तविक स्वरूप में स्थित है। अखंड ज्योति स्वरूप, सूक्ष्म प्रकाश का बिंदु, एक अलौकिक चमकते सितारे के रूप में मुझ आत्मा का यह दिव्य स्वरूप है। मैं कौन? मैं एक अजर, अमर, अविनाशी सत्ता, चैतन्य शक्ति, आत्मा हूं। यह शरीर मेरा टेम्पररी वस्त्र है, पर मैं आत्मा शाश्वत हूं। अब थोड़ी देर के लिए अपने उस शाश्वत स्वरूप ज्योति स्वरूप अलौकिक लाइट के बिंदु को अपने मन के नेत्र से देखते रहिए, महसूस करें।
राजयोगी मानो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी मेरे प्यारो, बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा, मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा, योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा, सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता, योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता, आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता, योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो